नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अपने यहाँ हिंदी पट्टी में एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इन दिनों दुनिया पर अपनी धौंस जमाने के लिए नेतन्याहू से लेकर ट्रंप और शिनपिंग जो तौर तरीका अपना रहे हैं उसे देखकर अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार का शीर्षक बहुत सटीक और मौजू है। महान राष्ट्र हमेशा गैंगस्टर जैसे, छोटे राष्ट्र वेश्याओं की तरह। आज लिखना शुरू करने ही वाला था कि द इकोनॉमिस्ट पत्रिका के ऐप पर आज के ही दिन यानी 8 मार्च 2026 को टुडेज कोट खंड में लिखा हुआ यह कोट पढ़ा। द ग्रेट नेशंस हैव ऑलवेज एक्टेड लाइक गैंगस्टर्स एंड द स्मॉल नेशंस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। यानी महान राष्ट्र हमेशा गैंगस्टर्स की तरह व्यवहार करते हैं, वहीं छोटे राष्ट्र वेश्याओं की तरह। मुझे लगा कि भला अब अमेरिका ईरान युद्ध, वैश्विक राजनीति और भारत की विदेश नीति पर लिखने के लिए क्या बचता है। इस एक वाक्य में 185 देशों में बटी पृथ्वी के 8 अरब मनुष्यों के इतिहास वर्तमान की व्याख्या है। यह सूत्रवाक फिल्मकार स्टैनली क्यूब्रिक का है, जिन्होंने पहले महायुद्ध से लेकर वियतनाम युद्ध, परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा, शीत युद्ध आदि पर बेजोड़ फिल्में, मसलन फियर एंड डिजायर, पाथ्स ऑफ ग्लोरी, डॉक्टर स्ट्रेंज लव, फुल मेटल जैकेट, बैरी लिंडन जैसी फिल्में बनाई। उन्होंने लगातार युद्ध, सत्ता, तकनीक और मानव स्वभाव को पर्दे पर उतारा। मतलब स्टैनली क्यूब्रिक न केवल वैश्विक पैमाने के फिल्मकार थे, बल्कि उनका उन वैश्विक बौद्धिक प्रतिष्ठानों में भी मान था, फिर भले वे ग्रेट नेशंस या कि ग्रेट गैंगस्टर के पोषक रहे हैं। सो महाशक्तियों की गुंडई गैंगिरी के आगे सभी देशों की वेश्यावृत्ति पर सोचें तो आधुनिक राष्ट्रों की रीति नीति में क्या निकलेगा। मोटा मोटी देश के लोगों के हितों देश हित को मजबूरी में छोड़ देना, झुक जाना, सौदा कर लेना। भारत की नई जनरेशन वेश्या सबसे राजनीति के भाव शायद नहीं समझ पाए, खासकर हिंदी भाषियों और सोशल मीडिया के भक्तजन। ये देवदास की पारों के आगे भव्य फिल्मी कोठे की फिल्मी वेश्या चंद्रमुखी में खोए हो सकते हैं, तो कॉलगल, देवदासी, तवायब जैसे शब्दों को ख्यालों में यह नहीं मानेंगे कि देशों के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ट्रंप, नेतन्याहू या शी जिनपिंग के आगे अपनी जमीर, अपना ईमान बेचे तो वह वेश्यावृत्ति है। जबकि भारत का राजनीतिक इतिहास, देश की दशा दिशा का ब्यौरा वेश्याओं, विश्वकन्याओं, दरबारी जनखों के अनुभव से भी भरा हुआ है। हम हिंदुओं की गुलामी या कि मुगलों, राजे रजवाड़ों के इतिहास के सत्ता खेल में इनका बड़ा रोल रहा है। पाटलिपुत्र का दरबार हो या आगरा, दिल्ली के लाल किले के बादशाह के आगे छोटे ठिकानेदारों के झुकने, नजराने, हर जाने, सुक्रियाना के साथ जमीर रियासत बेचने से लेकर बेटी ब्याहना तक सहज राजनीतिक व्यवहार रहा है। याद है अकबर के आगे जयपुर के राजा मानसिंह का अपने को बेचने का इतिहास। ग्रेट अकबर के आगे कथित देशी ग्रेट मानसिंह ने झुककर जो गुलामी की थी वह क्या था? स्वतंत्र चेता राणा प्रताप को घास की रोटियां खानी पड़ी थी। बहरहाल 2026 के मौजूदा समय में लाठी के ग्रेट नेशंस, ग्रेट गैंगस्टर्स कौन है? इनके आगे कितने राष्ट्र, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति झुके हुए हैं? मेरा मानना है इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दूसरे शब्दों में तीन सभ्यतागत महाशक्ति लाठियां, बुद्धि पूंजी की यहूदी महाशक्ति नंबर एक पर, तो ईसाई महाशक्ति दूसरे स्थान पर, तथा मैन्युफैक्चरिंग, औद्योगिक, व्यापारिक महाशक्ति के रूप में चीनी सभ्यता। रूस और व्लादिमीर पुतिन का अर्थ नहीं है, पुतिन ने रूस को पिछलग्गू बना दिया है। वे यूक्रेन युद्ध चीन की छाया में और उसकी कृपा पर लड़ रहे हैं। नंबर एक पर बेंजामिन नेतन्याहू इसलिए क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद से यहूदी लगातार बुद्धि, पूंजी, तकनीक की बदौलत अपनी दुधारी तलवार लिए हुए है। इससे अमेरिका चलता हुआ है, उसी के बल पर इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप का मनमानी है। ध्यान रहे, इस्लाम के प्रति जैसा यहूदी दिमाग है वैसा ही इवेंजेलिकल ईसाई राष्ट्रवादी दिमाग है। तभी नेतन्याहू ने अमेरिका से ईरान पर वह कराया है जिसकी कल्पना नहीं थी। सोचे, अमेरिका की सेना लगभग सब कुछ तो नेतन्याहू के कहने में काम कर रही है। खुफिया सूचनाएं, नक्शा, रोड मैप, ब्रीफिंग, सबका केंद्र बिंदु नेतन्याहू है। और फिर ट्रंप गैंग लीडर की तरह बोलते हुए, क्या यह अपने आप में द ग्रेट नेशंस ग्रेट गैंगस्टर्स का साक्ष नहीं है? और ग्रेट इजराइल अमेरिकी गैंगस्टर जोड़ी के आगे ठुमकाने की वेश्यावृत्ति लिए हुए कौन है? मेरा मानना है पूरा पश्चिम एशिया, सभी अरब इस्लामी देश। कैसे? सोचे, अक्टूबर 2023 से लेकर आज 8 मार्च 2026 तक गाजा में नेतन्याहू ने अरब लोगों यानी फिलिस्तीनी मूल के वे अरब जिन्हें खदेड़कर 1948 में तब की ग्रेट महाशक्ति अमेरिका, ब्रिटेन की गैंग ने इजराइल बनाया था, उसको बेरहमी से मारा, उजाड़ा, खदेड़ा। लेकिन ऐसा आंखों देखी के बावजूद इस्लाम के ठेकेदार सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, यूएई, इराक, तुर्की के शेखों, राष्ट्रपतियों ने सार्वजनिक तौर पर इसराइल को यह अल्टीमेटम देने की इतनी भी जरूरत नहीं की कि इसराइल अब रुक जाए, नहीं अन्यथा। उस नाते पश्चिम एशिया के शेखों, सऊदी किंग प्रिंस, राष्ट्रपतियों, तानाशाहों, प्रधानमंत्रियों की 80 वर्षों की कूटनीति, सैनिक भूभाग राजनीति की अमेरिका इसराइल के आगे लाचारगी का मामला अतुलनीय है। इसराइल जीरो से शुरू हुआ था, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों में बुद्धि यानी सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड बौद्धिक प्रतिष्ठानों में प्रोफेसरों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों के बतौर महाशक्ति जैसा ठोस यहूदी दबदबा तथा पूंजी के महाशक्ति बल से यहूदियों ने इसराइल को सब कुछ दिया या दिलाया। नतीजतन इसराइल जैसा बना उसका छटांग भी अरब इस्लामी देश नहीं बन पाया, जबकि अरब खाड़ी के इन देशों ने तेल से बेनतहा कमाई पाई। अमीरी बनी मगर आया तो कंक्रीट के मकान, शहर बसाने या इमारतें खड़ी करने के अलावा कुछ नहीं किया। इसराइल की राजधानी यरूशलम व तेल अबीब के बगल के देशों में चमक भरपूर है, मगर मौलिक ज्ञान विज्ञान स्वतंत्रता की भूख नहीं है। इसराइल की राजधानी में कुवैत, दुबई, बहरीन, सऊदी, कतर जैसी इमारतें नहीं मिलेंगी। न ही नेतन्याहू ने अपने प्रधानमंत्री मोदी जैसा किले नुमा प्रधानमंत्री आवास बनाया, न दफ्तर बनवाए। उल्टे नेतन्याहू ने प्राचीन शहर यरूशलम को राजधानी बनाया। और पता है दुबई, कुवैत, सऊदी के नए शहरों की शान का रक्षक कौन है? ग्रेट नेशन इसराइल अमेरिका या कि नेतन्याहू ट्रंप की गैंग? तथ्य है कतर, सऊदी, दुबई, बहरीन, इराक में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे हैं इनकी रक्षा के लिए। ईरान के हमलों के आगे इससे इन देशों को कवच मिला हुआ है, लेकिन इससे साबित क्या हो रहा है? इन देशों ने हमला नहीं करने की हर संभव मिन्नत की, लेकिन अधीनस्थ कॉलोनियों या शक्तिहीन छोटे देशों की कौन सुनता है? तभी दुनिया का मुसलमान यह ज्यादा सोच रहा होगा कि इन देशों पर मिसाइल छोड़ ईरान सही कर रहा है। दुनिया के 2.25 अरब मुसलमानों, जिसमें सिया और सुन्नी दोनों हैं, उनमें अधिकांश का मनोविज्ञान पहले गाजा और अब ईरान पर इजरायली अमेरिकी ध्वंस से बेहद घायल है। सोचना भी गलत नहीं है कि खाड़ी के इन देशों के मुसलमानों में भी यह सोचने वाले होंगे कि ईरान सही कर रहा है। तभी पश्चिम एशिया के अरब खाड़ी देशों पर यह वाक्य बेमतलब नहीं है, द स्मॉल नेशंस लाइक प्रोस्टिट्यूट्स। पर क्या करें, ऐसे ही कायदे हैं। बड़ी मछली छोटी को खाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। इसी भाव में ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 56 इंची छाती की हवा हवाई विदेश नीति की। अपने को ग्रेट नेशन, विश्वगुरु, चमकती आर्थिकी के हवाले शी जिनपिंग, पुतिन और ट्रंप से गलबहिया के फोटो बनवाए। एजेंसियां मोसाद की तरह कनाडा अमेरिका में दुश्मन तलाशने लगी तो पड़ोस में ठेके दिलवाने से लेकर उन्हें ठोकने के तौर तरीके भी बने। पर भला असल तीन गैंगस्टर महाशक्तियों से यह छिपा रह सकता था? तभी पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के समय राष्ट्रपति ट्रंप का मूड बिगड़ा नहीं कि भारत तब से वह सब भुगतता हुआ है जो दुनिया में किसी ने नहीं भुगता। मई 2025 से ट्रंप भारत को लगातार जलील करते आए हैं। भारत की सैन्य क्षमता से लेकर उसे दंड देने से लेकर किसके साथ क्या व्यापार करें और करें या ना करें, जैसे आदेश भी अमेरिका से आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारत को सब कुछ मान, कभी कोई प्रतिवाद नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप कई और देशों के साथ भी यही व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि द ग्रेट नेशंस हैव ऑलवेज एक्टेड लाइक गैंगस्टर्स। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।